ओम शांति। संस्कृत में एक श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये गणना लघु चेतना वाले करते हैं, लेकिन जो उदार चरित हैं उनके लिए तो ये पूरी वसुधा एक परिवार है। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सुनते रहे हैं, मानते भी रहे हैं। और उसका कारण भी रहा कि आदि काल में सतयुग के समय जब भारत स्वर्ग था, भारत ही विश्व था, तो उस समय श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत, एकता थी। और श्री लक्ष्मी श्री नारायण अपनी प्रजा की पालना परिवार की तरह करते थे। सभी में आपस में बहुत स्नेह सम्मान की भावना थी, और वो भी निस्वार्थ स्नेह था, क्योंकि सभी सर्व प्राप्ति संपन्न थे। और ऐसा दो युगों तक चला, त्रेता युग तक। 2500 साल के बाद फिर संसार में दूसरे धर्मों की स्थापना शुरू हुई और तब अनेकता प्रारंभ हुई। और कलयुग तक आते आते अनेक धर्म, अनेक देश, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेकता हो गई। और जब ये अनेकता बढ़ी तो फिर संसार में दुख अशांति होने लगी। तो वैसे तो धर्म हमें सुख और शांति का मार्ग दिखाते हैं। धर्म इंसान को प्रेम सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है, दया सिखाता है, करुणा सिखाता है। लेकिन जो धर्म है, जब वो सांप्रदायिकता में बदल जाता है, कट्टरवाद का रूप ले लेता है, रूढ़िवादी हो जाते हैं, तो फिर आतंकवाद जैसी घटनाएं होती हैं संसार में। और हम देखते हैं धर्म के नाम पर आज हिंसा होती है, मारकाट होती है। ऐसे ही संसार में जाति भेद है, तो देखते हैं कि जो ऊंची जाति वाले हैं वो नीची जाति वालों की उपेक्षा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। रंग भेद है, तो देखते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से नफरत करते हैं। और आज भी अमेरिका में वर्तमान समय में जो काले हैं वो आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और उसके कारण कितने ही लोग हिंसा का शिकार हुए हैं। दास प्रथा चली अमेरिका में, जिसमें गोरे लोग काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे, और फिर लिंकन के प्रयासों से वो दास प्रथा का अंत हुआ। आज जो भाषा भेद है, तो हम देखते हैं जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो अन्य भाषाओं को जानने वालों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये जितनी अनेकताएं बढ़ी हैं इस संसार के अंदर, उतना ही दुख अशांति चरम होती गई। और अंत में कलयुग के अंतिम समय में कहते हैं जब अति होती है तो अंत होता है उसका, और परमात्मा स्वयं इस सृष्टि से अवतरित हुए हैं। और उन्होंने हमें ये स्मृति दिलाई, हमें ये सत्य ज्ञान दिया कि हम आत्मा हैं और हम सभी आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सभी परम धाम से सृष्टि पर आए हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब देह के धर्म हैं। आत्मिक नाते से अपने अनादि स्वरूप में तो हमारा धर्म शांति है, प्रेम है, सुख है। और यही कारण है कि धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है। कोई भी धर्म वाला ये नहीं कहेगा कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे प्रेम नहीं चाहिए। और आज जो हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वो परमात्मा की शिक्षाओं के अनुसार जब ये स्मृति हमारे अंदर आ गई तो हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति में परिवर्तन हो गया। तो हम देखते हैं आज लाखों भाई बहनें जो जुड़े हुए हैं इस ईश्वरीय परिवार में, सभी ने उस आत्मिक भाव और भावना के आधार पर जब वो व्यवहार में आते हैं तो एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का व्यवहार करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं। यहाँ कोई धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, लिंग भेद नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं विश्व के अंदर, सेवार्थ कई बार विदेश जाना हुआ है, तो हम कभी ये अनुभव नहीं करते हैं कि हम दूसरे देश में आ गए या हम दूसरे धर्म के भाई बहनों से मिल रहे हैं या हम दूसरी भाषा के भाई बहनों के साथ हैं। लेकिन जो रूहानी स्नेह है आपस में, वो इतना अपनापन अनुभव कराता है कि महसूस ही नहीं होता कि कोई भिन्नता है। एक बार चीन जाना हुआ था और वो बहुत ही निराला अनुभव था मेरे लिए, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि कुछ साल पहले जब हम चीन गए तो वहां से एक निमंत्रण आया था। वहां चीन की एक स्पिरिचुअल लीडर यहाँ ज्ञान सरोवर में आईपीआईपी रिट्रीट में आई थी और वो बहुत प्रभावित हुई जब वो यहाँ कुछ दिन रही और उसने यहाँ ज्ञान सीखा। तो जब वो वापस लौट कर गई तो वो अपने ग्रुप में, जो उनका ग्रुप था, उनकी वो कॉन्फ्रेंस करती रहती थी। तो उसने उस कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर से कोई आए ऐसा अपना इच्छा रखी। तो फिर ड्रामानुसार हमें भेजा गया और वहाँ शेंजेन एक शहर है चीन में, वहाँ के एक होटल में उन्होंने कार्यक्रम रखा था और करीब 1300 चाइनीज भाई बहनें उस हॉल के अंदर थे और उसमें हमें मेडिटेशन और हेल्थ के ऊपर एक घंटा उनको डिस्कोर्स देना था और फिर आधा घंटा प्रैक्टिकल मेडिटेशन कराना था। तो वो कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम के बाद जब हम नीचे उतरे तो वहाँ उस कार्यक्रम में बहनें बहुत अधिक संख्या में थी, भाई भी थे लेकिन कम संख्या में थे। तो वो जो चाइनीज बहनें थी वो सब हमारे, मेरे साथ जो वहाँ चाइना के निमित बहन है वो भी थी जो चाइनीज में ट्रांसलेशन कर रही थी। तो हम दोनों आए नीचे और वो बहनें हमारे नज़दीक आकर के, भाषा नहीं जानते थे लेकिन इशारों से कि क्या हम आपको छू सकते हैं, क्या हम आपको गले मिल सकते हैं। और मैंने देखा कि कितने ही बहनों के आंखों में आंसू थे। तो बाबा ने उनको क्या अनुभव कराया, और मैं ये कहूंगी कि ये वो रूहानी शक्ति थी कि उनका देश अलग, उनका धर्म अलग, उनकी भाषा अलग, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और इतना समीप सभी लग रहे थे कि जैसे अपने ही हैं। तो ऐसा अपनापन जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, जो स्मृति दिलाई, और जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो वो हमें एक परिवार ही महसूस होता है। और केवल ईश्वरीय परिवार नहीं, पूरा विश्व ही हमें पता है कि हमारा परिवार है। और आज वर्तमान में पूरा विश्व एक साथ महामारी के संकट से जूझ रहा है, तो आज इस संकट के समय में भी पूरा विश्व एक साथ ही है। हम देखते हैं भारत देश में भी अनेक सामाजिक संगठन जो भी अपने भारत देश के ऐसे भाई बहने हैं जिनकी कोई मजबूरी रही, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, जो बहुत गरीब हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामने आए और बिना किसी भेदभाव के वो सभी को सहयोग कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी जो हैं प्रयास कर रहे हैं, हालांकि राजनीति में थोड़ी राजनीति ही है, लेकिन फिर भी अगर सभी के साथ में आए तो निश्चित रूप से ये जो युद्ध है, जिसको कहते हैं कोरोना से युद्ध है, इसको जरूर सभी जीत लेंगे। और इस वर्तमान समय में परिवार अधिकतर घरों में ही हैं, अधिक समय वो घर में व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि बाहर आने जाने की इतनी स्वतंत्रता नहीं है। तो जब हम साथ में रह रहे हैं तो उसके लिए यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे परिवार में स्नेह सम्मान और खुशनुमा माहौल बना रहेगा, जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और इस वर्तमान समय में हमें उच्च मनोबल की आवश्यकता है। जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं उसके लिए हमारी जो ममता है वो बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम कहते हैं, ऐसे ही मन की क्षमता, जो मन शक्ति है, वो भी हमें श्रेष्ठ चाहिए। और वो तभी होगा जब सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, सभी एक दूसरे के साथ स्नेह से रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम बहुत अपेक्षाएं नहीं रखें एक दो से। ज्यादातर हम अपेक्षा रखते हैं इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग हैं। कोई भी दो मनुष्य इस दुनिया एक जैसे नहीं है। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं, उनकी सोच हमसे अलग हो सकती है। तो हम उनको समझने की कोशिश करें, हम दें, हमारा जो भाव हो कि वो हमारे लिए करें उसकी बजाय हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे देना है, मुझे प्रेम देना है, मुझे सुख देना है, मुझे सहयोग देना है। हम देंगे तो हमें अवश्य मिलेगा। ये सिद्धांत है कि जो हम देते हैं वही लौट कर हमारे तक आता है। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा नहीं करें, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने गलती कर दी, या कोई भी और ऐसी बात कि कोई उपेक्षा कर देते हैं, कोई अपमान कर देते हैं, तो हम शांति बनाए रखें, शांत रहें। अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर हम स्वयं भी अशांत होते हैं और दूसरों को भी हम अशांत करते हैं। कोई दूसरे हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं तो भी हम शांत रह जाएं। अगर हम सहन कर लेते हैं तो सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, सहन करना वास्तव में शक्ति है। कई बार समझते हैं कि यदि हम सहन करेंगे तो हमें ही गलत समझ लिया जाएगा और हो सकता है कि फिर हमारे को उसका परिणाम भुगतना पड़े। लेकिन सहन करना सदा ही भविष्य अच्छे परिणाम है। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगी मैं कि एक परिवार में सास बहू जैसे होते हैं घर परिवारों में, तो वो जो सास थी वो अपनी बहू की हर छोटी छोटी गलती निकाल करके उसको कहती रहती थी और काफी कई बार उनकी बात बढ़ जाती थी, लेकिन जो बहू थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी और वो चुपचाप सुनती थी। घर में जो ससुर थे वो भी देखते थे इस दृश्य को। तो एक बार तो जो सास थी वो इतना अधिक बोल रही थी कि आखिर ससुर ने हस्तक्षेप किया उसमें कि क्यों आप इतना बोल रही हो, बिचारी तो अपना मुंह भी नहीं बोल रही है, चुपचाप सुन रही है, सुनती ही रहती है। तो फिर वो बहू ने बोला कि पिताजी कोई बात नहीं, अगर माँ जी, ये मेरी माँ है, अगर वो मुझे नहीं कहेंगी, वो मुझे नहीं समझाएंगी तो कौन समझाएगा, मुझे इनके कहने का बुरा नहीं लगता है। और जब सास ने ये शब्द सुने अपनी बहू से तो तुरंत उसका मन और उसकी जो भावना थी अपनी बहू के प्रति वो बदल गई और आगे के लिए उसका व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया। तो जो उसने सहन किया उसका सुखद परिणाम उसे मिला। थोड़ा धैर्य हमें रखना पड़ता है, थोड़ा समय वो सहन कर लेना पड़ता है। ऐसे ही मानो कोई गलती करते हैं तो उसकी गलती को हम चित्त पर नहीं रखें, तो कहते हैं क्षमा करो और भूल जाओ। उससे हमें ही फायदा होता है क्योंकि हमारा ही मन शुद्ध हो जाता है। अगर हम अपने चित्त पर किसी की गलतियों को रखते हैं तो हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उस आत्मा के प्रति, वो हमारे मन को भी कमजोर बनाती हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती हैं। और मानो हमसे गलती हो जाती है तो हम माफी मांग लें। कभी भी छोटी छोटी बातों को हम बड़ा नहीं करें, बड़ी बातों को छोटा करना, जिसे बाबा कहता है फुल स्टॉप लगा दो। नहीं तो हर बात में कल्याण है, जो भी हो रहा है, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी कल्याण है। तो बाबा कहता है कल्याण का बिंदु लगा दो। और मानो कोई हमारी ग्लानी करता है, इंसल्ट करता है, तो हम सेंट बन जाएं। सेंट बन जाएं माना ध्यान ही नहीं देना है उसकी तरफ। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें फीलिंग आएगी। ये भी हमें समझाया है बाबा ने कई बार कि हमारा कोई हिसाब किताब होता है, इसलिए ये स्थिति आपसी संबंधों में कई बार पैदा होती है। तो मम्मा की एक बात याद आती है कि एक बार मम्मा के सामने एक बहन आई और उसने कहा, मम्मा इसने मुझे ऐसा ऐसा कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा, अच्छा तुम्हें बुरा लगा तो कहाँ बुरा लगा? उसने कहा कि मम्मा मन में बुरा लगा ना। तो मम्मा ने पूछा कि अच्छा तुम्हारे मन में ये बात कहाँ से गई? तो उसने कहा, मम्मा कान से गई। तो मम्मा ने कहा कि अगर कोई तूफान आता है तो हम क्या करते हैं? अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं ना, ताकि तूफान का जो नुकसान है वो हमारे घर को ना हो। तो तुमने अपने कान बंद क्यों नहीं कर लिए? तो कहने का भाव क्या है कि आपने उनकी बातों पर ध्यान ही क्यों दिया। तो ऐसी बातें जो हमें किसी भी तरह से दुख पहुंचाती हैं, इसलिए बाबा कहता है न दुख दो न दुख लो। तो वो दुख देने वाली बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, यानी हमें दुख नहीं लेना है। अगर कोई सुधारने वाली बात है, हमें लगता है कि सचमुच हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो हम भले ध्यान दें, अपने अंदर परिवर्तन लाएं। पर हम कई बार दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें स्वयं को बदलना है। दूसरों को हम नहीं बदल सकते, वो जो हैं जैसे हैं। मानो उनके कोई ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जिसके कारण हम तंग होते हैं, तो हम उनको बदल नहीं सकते, तो फिर उन्हें स्वीकार कर लें। ये जो हैं जैसे हैं इनको हम समझ कर चलेंगे, क्योंकि उनके साथ ही हमें रहना है। अगर वो हमारे परिवार के हैं तो उनके साथ ही हमें रहना है, और यदि हम उनके उन संस्कारों से तंग होते रहेंगे तो कौन दुखी होगा, कौन टेंशन में रहेगा? हम ही रहेंगे। तो हम समझ लें कि इनके ये संस्कार हैं और उस अनुसार से अगर हम समझ कर चलते हैं तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं। और जहां हमें परिवर्तन लाना है, अपना परिवर्तन भले हम करें, जो भी मेरी कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करें। किसी का भी हमें सामना नहीं करना है, कोशिश करके कभी भी हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए। बदला लेने की भावना ना हो किसी के प्रति, लेकिन मुझे बदलना है। तो इस तरह से आज जो भी स्थितियां हैं संसार की, जो हमने देखा कि धर्म भेद हैं, जाति भेद हैं, भाषा भेद हैं, रंग भेद हैं, तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर इन सब को भुला करके हम एकजुट हो जाते हैं। हम आत्मिक दृष्टिवृत्ति के अनुसार अपना जीवन व्यवहार करते हैं तो फिर इस कलयुगी पर्वत को उठाने में हम सबके सहयोग की उंगली लग जाएगी, जिसको कहते हैं सर्व के सहयोग से ये संसार सुखमय संसार हो जाएगा, यानी ये धरती फिर से स्वर्ग होगी। लेकिन हम साथ साथ चलें और उसके लिए आपस में जो स्नेह सम्मान और सम्मानता का व्यवहार हो एक दूसरे के प्रति, उसे हमें बनाए रखना है। ओम शांति।
अयम् निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है,
सारे झगड़ों का मूल है।
ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है,
यही सोचना भूल है।
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए,
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए।
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए।
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया,
ये सब हमने ही बनाया।
आत्मा का स्वधर्म भूले अपना लगे पराया,
अपना लगे पराया।
अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है।
अलग अलग है रंग फूल के माटी सबकी एक है।
माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है।
माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है।
जीवन नैया पार उतारे शिव ही वो पतवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।